परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैं आँखें अपनी पर्वत की
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए रेडियो के निकट बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने एक सिद्धांत को देखा था कि जो पवित्र आत्मा के चराए चलता है वह स्वार्गिक बातों की लालसा में रहता है और सद्गुण प्रकट करता है जो अंतरवासी पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, अब यहाँ एक और महान सिद्धांत है, लेकिन इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक भाई बहन जब आपके वचन को सुने अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके, उसे समझ सके और उसके अनुसार चल सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशानी हालत में हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए, आज इस बात को वे जानने पाए कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। आज इस अध्ययन के द्वारा हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद को निकाल लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 6 पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ध्यान दें, शरीर पर मन लगाना इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की सहभागिता से अलग किए जा चुके हैं और देह यहाँ पर तत्काल ही मृत्यु को दिखाता है। विश्वासी में अंतरवासी आत्मा जीवन और शांति लाता है। यदि हम पाप करें तो हम उसके समक्ष पापों का अंगीकार करें और उसे अपना शोधन करने दें। इस प्रकार हम सहभागिता में पुनः आ जाते हैं। आगे शब्द है जीवन, जो आत्मा देता है, परिपूर्ण संतोष और संपूर्ण क्षमता देता है। जीवन को परिपूर्णता और सर्वोत्तमता में जीना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे आज वास्तव में जी रहे हैं, परंतु उस जीवन का एक घटिया प्रतिस्थापन जो परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है। आइए आगे देखें। शांति का अर्थ है वर्तमान और भविष्य के लिए स्वस्थ एवं तनाव रहित जीवन। मेरे प्रियो, आपको और मुझे इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कैसी आवश्यकता है? एक बात तो निश्चित है कि यदि आप शरीर के लिए जी रहे हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है, आप सहभागिता रख भी नहीं सकते। अंतिम भोज से पूर्व प्रभु यीशु ने पत्रस से कहा था, यदि मैं तेरे पांव न धोऊं तो मेरे साथ तेरा भाग नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है। मेरे मित्रों, वह इस विषय में गंभीर था, वह आपके और मेरे साथ सहभागिता नहीं करेगा यदि हम पाप करें और दैहिक जीवन या शारीरिक जीवन जिएं। अब कोई कहेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही कीजिए जो शमौन पत्रस ने किया था। उसने अपने पांव आगे कर दिए और प्रभु को उन्हें धोने दिया। आपको और मुझे उसके पास अपने पाप स्वीकार करने जाना है। पहला योना के पत्र 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, हम कौन हैं? हम विश्वास तो करते हैं, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब वह ऐसा करता है तब मसीह का लहू काम में आता है। मेरे प्रियो, आप और मैं नहीं जानते कि पुराना स्वभाव कैसा दुष्ट है और हमें उसके पास पापों से शुद्ध होने के लिए जाना आवश्यक है। एक अंग्रेजी कवि ने लिखा है, जो घुड़सवारी के घुड़साला को साफ करते थे, कहते हैं, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि तू ही एकमात्र है जो इस अजयन घुड़साल को साफ कर सकता है। चाहे संपूर्ण समुद्र का जल हो, दुनिया का सारा साबुन हो, परंतु तेरा लहू मुझे धोए तो आशा नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हमें सब पापों से लगातार धोता रहता है। आप योहन्ना रचित सुसमाचार 1:7 को अवश्य देखें। यह पुराना स्वभाव पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। परमेश्वर की योजना में इसका सुधार करना नहीं है। वह हमें नया स्वभाव दे देता है और अब आप और मैं इस पुराने स्वभाव में परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप उस पुराने स्वभाव में ही बने रहते हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। अब कोई कहे, यदि परमेश्वर की संतान पाप करे तो उसमें और एक पतित मनुष्य में क्या अंतर है? अंतर केवल यह है, पतित मनुष्य जब रात में नगर को लाल रंग से रंगता है तो वह आकर कहता है, अगली बार में एक बड़ा ब्रश और बड़ी बाल्टी ले जाऊंगा, मैं उसमें जीना चाहता हूं। जबकि परमेश्वर के संतान ऐसा काम करे तो परमेश्वर को पुकार उठेगा, हे परमेश्वर, मैं इस काम के लिए स्वयं से घृणा करता हूं। मेरे मित्रों, आज का यह विचार कि आप अपने पुराने स्वभाव को प्रशिक्षित कर सकते हैं उचित नहीं है। यह रूढ़िवादी की ओर ले जाता है और ये प्रिय रूढ़िवादी अपने देह को वश में करने का प्रयास करते हैं। वे अत्यधिक धर्मी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे सर्वाधिक भ्रष्ट अफवाह है। डॉक्टर न्यूएल ने कुछ बड़ी रोचक बातें कही है जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और अधिक अच्छा करने की आशा स्वयं को केवल मसीह में देखने से चूकना है। आप कहेंगे, मैं और अधिक अच्छा करने की आशा करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको आज स्वयं को मसीह में देखने की आवश्यकता है और यह समझना है कि केवल आपके द्वारा परमेश्वर के आत्मा का विचरण ही इसे कर सकता है। न्यूएल फिर कहते हैं, स्वयं में निराश होना अच्छा होगा कि आप स्वयं में निराश हों। आप जानते हैं कि मित्र की देह से कोई अच्छी बात नहीं आ सकती है। स्वयं पर भरोसा रखना छोड़ दें और विश्वास करें कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर में जीवित रहने के लिए स्वभाव के द्वारा योग्य बना सकता है। न्यूएल कहते हैं, निराश होना अविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं, ओह मैं तो बहुत निराश हूं। मेरे मित्र, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य, एक योजना और आशीषें हैं और आपको उन्हें थामना है। एक और बात जो उन्होंने कही, घमंड करना अंधा होना है। अपने आप तो हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई स्थान नहीं रखते हैं। मेरे मित्रों, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें और अंतिम अनमोल वचन जो उन्होंने कहे, परमेश्वर की आशीषों में कमी अविश्वास का परिणाम है, भक्ति में चूक से नहीं। मेरे मित्रों, मैं तो इन ढोंगियों से थक चुका हूं। समर्पित विश्वासी जो अपनी भक्ति की ढोंग मारते हैं, परमेश्वर की आशीषों में कमी का कारण है कि हम उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए नहीं कि हमारी भक्ति में कोई कमी है। आज परमेश्वर पर विश्वास किया जाए। सच्ची भक्ति मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है कि प्रकट हो, परंतु यह समझने से परमेश्वर की आशीष तो उसी समय आ गई थी जब हम अयोग्य और अभक्त ही थे। मुझे परमेश्वर से जो कुछ भी प्राप्त है वह मेरी भक्ति के कारण नहीं है। मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके अद्भुत अनुग्रह से ही आता है। मैंने देखा है कि ये लोग जो भक्ति का प्रचार करते हैं वे सेवा में अपना जीवन अर्पित करने के लिए भीड़ लगाते हैं। मैं उसमें से एक ही भीड़ को देख कर आ चुका हूँ। मेरे मित्रों, आप उनका विश्वास नहीं कर सकते। वे झूठे थे, वे अनिष्ट थे, वे अफवाह थे, वे आपको क्रूस पर चढ़ा देंगे। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है? आज आपको जिस बात की आवश्यकता है वह है कि विश्वास करें, परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। आप स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, यह तो बड़ी गंभीर बात है। जी हाँ, मैं आशा करता हूं कि यह है। मैं इसे गंभीर ही चाहता हूं, क्योंकि पौलुस यहां अति स्पष्ट कहता है कि सांसारिक मन परमेश्वर का बैरी है। हम रोमियों के पत्र 8:7-8 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस पद से प्रकट होता है कि देह कैसी महाभ्रष्ट और पूर्ण रूपेण अकिंचन है। यह आत्मिक अराजकतावादी है, मनुष्य में आत्मिक चिंगारी है और परमेश्वर के प्रति गुप्त झुकाव है, तो यह पद इसका निराकरण करता है। सच तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर का बैरी है, वह अपराधों और पापों में मृतक ही नहीं विद्रोह में सक्रिय है कि सच्चे एवं जीवित परमेश्वर से और मसीह यीशु के मनुष्यत्व से दूर रहे। यदि मनुष्य को उसकी स्वाभाविक स्थिति से स्वर्ग ले जाया जाए तो वह वहां पर क्रांति ले आएगा और सूर्यास्त से पहले विद्रोह की सभा बुला लेगा। याकूब अपनी स्वाभाविक दशा में मल्ल युद्ध कर रहा है, उसने स्वयं तो ऐसा नहीं किया था, परंतु जब परमेश्वर उसे युद्ध करने आया तब उसने भी बराबर युद्ध किया। परंतु मेरे मित्रों, उसकी विजय तब तक नहीं हुई थी जब तक उसने हार ना मानी। देह अर्थात शरीर जो भी करके दिखाए परमेश्वर को वह ग्रहण योग्य नहीं होता है। अच्छे काम, सभ्यता, संस्कृति, मानवीय विकास आदि सब परमेश्वर के लिए दुर्गंध युक्त हैं। कलीसिया के सदस्यों के दैहिक गुनगुने पन में किए गए धर्म के काम मसीह को अत्यधिक अरोचक लगते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में। जी हाँ, मुझे संदेह है कि हम अपने मानवीय पर्व के प्रति परमेश्वर के मूल्यांकन को स्वीकार करते हैं, है या नहीं? जी हाँ, यह मनुष्य का भयानक रूप है, परंतु यह सच है, तथापि परमेश्वर के आत्मा में मुक्ति है। मेरे मित्रों, क्या आप तैयार हैं कि आप अपने निर्बल पापी स्वभाव पर भरोसा करने की अपेक्षा उसे परमेश्वर के आत्मा को सौंप दें? यही एक बड़ा प्रश्न है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे मित्रों, यही सच्ची परख है, परंतु तुम में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। एक सच्चे नया जीवन प्राप्त विश्वासी और एक सच्चे मसीही जन की पहचान यही है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पौलुस ने संसारिक कुरिन्थवासियों से कहा था, 1 कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? जी हाँ, जब पौलुस पहली बार इफिसुस गया तब वह एक बात देखने से चूक गया। उसने विश्वासी की विशिष्ट पहचान नहीं देखी, अतः उसने पूछा, क्या तुमने विश्वास करने पर पवित्र आत्मा पाया था? वे समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रहा है, अतः उसने उनसे पूछा, जिसे हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था, वह मसीह यीशु में विश्वास करना नहीं था, अतः उसने उनमें मसीह का प्रचार किया और उसके बाद उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और उसके नाम में बपतिस्मा लिया। हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 5 पद में देखते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासी एक नई सृष्टि है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा करते हैं? क्या ये बातें आपके जीवन में सर्वोच्च हैं या क्या आप परमेश्वर के विद्रोही हैं? रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। दूसरे शब्दों में, अब यदि मसीह तुम में है तो निसंदेह देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु धर्म के कारण आत्मा जीवन है। वह यहाँ कहना चाहता है कि आप और मैं मसीह में हैं, और क्योंकि हम मसीह में हैं इसलिए जब वह मरा तो हम भी मर गए। हमें इस पर विश्वास करना है, जैसा कि हमें पहले ही कहा जा चुका है अर्थात बताया गया है। हमें उसके अधीन होना है अर्थात अपनी देह उसे दे देना है। यह न कहें कि आप नहीं कर सकते, यह विश्वासी की भाषा नहीं है। गलातियों के पत्र 2 अध्याय के 20 पद में पौलुस इससे योग्य था कि कहे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, आप यदि आज अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के अंतर्वास का बोध नहीं करते और उसमें परमेश्वर की सेवा की मनोकामना नहीं है तो पौलुस के परामर्श को स्वीकार करें। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रभु यीशु चाहता है कि हम जांचे जाएं, हम जाने। कुरिन्थियों के पत्र 1:10 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मेरे मित्रों, यदि आपको निश्चित नहीं कि मसीह आप में अंतर्वासी है तो वह आपको आमंत्रित करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जी हाँ, क्या आपका द्वार खुला है? क्या वह भीतर आ गया है? मेरे मित्रों, देह मृत्यु के स्थान में रखी जा चुकी है। परमेश्वर की संतान को यह बात समझना है और उसे अपना जीवन परमेश्वर की आत्मा को सौंप देना है। वह निश्चय ही कहे, हे प्रभु, मैं नहीं कर सकता, परंतु तू मेरे द्वारा कर सकता है। रोमियो की पत्री 8:11 में हम पढ़ते हैं, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये देह जो आपके और मेरे पास है एक दिन कब्र में रख दी जाएगी यदि मसीह हमारे जीवन में नहीं आया तो। तथापि अंतर्वासी पवित्र आत्मा हमारा आश्वासन है कि हमारी देह मृतकों में से उठाई जाएगी। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 5:1-4 में हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। पवित्र आत्मा हमें मृत्यु की देह से मुक्ति दिलाएगा और यह पुराना स्वभाव है। रोमियो की पत्री 8:12 में लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। जी हाँ, दूसरे शब्दों में हमें देह के अनुसार नहीं जीना है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की देह, मन और आत्मा के द्वारा। पाप करने पर उसका आत्मा परमेश्वर के प्रति मर गया। स्मरण रखें कि उत्पत्ति के पुस्तक 2:17 में परमेश्वर ने चिताया था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मित्रों, यह आदम को फल खाने के लिए मना किया गया था, परंतु आदम उस फल को खाने के बाद भी वर्षों जीवित रहा, परंतु आत्मा में वह तुरंत ही मर गया था। मनुष्य उल्टा हो गया था, देह पुराना स्वभाव जो शरीर पर प्रभुता करने लगा। आज मनुष्य आत्मा में भरा हुआ है। नए जीवन का अर्थ है कि आप सीधे किए गए हैं, आपका आत्मिक पुनर्जन्म हुआ है और अब आप में वह स्वभाव है जो परमेश्वर की सेवा के लिए उत्सुक रहता है। मेरे मित्रों, मसीह के निकट रहना एक महत्वपूर्ण बात है। आप मसीह की सेवा में सक्रिय हो सकते हैं, दीमक की तरह सक्रिय, परंतु जहां तक आपका अपना प्रश्न है, मसीह बाहरी अंतरिक्ष में हो सकता है। प्राकृतिक मनुष्य कहता है कि वह अपने देह को संतुष्ट करने के लिए ऋणी है। वह अपनी बेईमानी का तर्क प्रस्तुत करके कह सकता है, मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं यौन तृप्ति के लिए जीता हूं और मुझे अपनी आवश्यकता पूरी करनी है। आज यह बात हर जगह सुनने को मिलती है। पुराने स्वभाव को संतुष्ट करने के कारण मनुष्य भयंकर अनैतिकता में गिर गया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि हम विश्वासी देह के ऋणी नहीं है। मेरे मित्रों, देह जो हम सबके पास है एक पतित अशुद्ध धूर्त है, हम उसके ऋणी कदापि नहीं है। रोमियो के पत्र 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। जी हाँ, परमेश्वर के लिए मर जाओगे, अर्थात उसके साथ आपकी सहभागिता नहीं होगी। मैं कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप अनुभव से इस तथ्य को जानते हैं, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके जीवन में अंगीकार से बचा हुआ कोई पाप है तो क्या आप आराधना में जाना चाहेंगे? क्या आप बाइबल पढ़ना चाहेंगे? क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? निश्चय ही नहीं, आप परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, यदि आत्मा से आप स्वयं नहीं कर सकते, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए हम व्यवहारिक रूप से सोचें, आज आपकी समस्या क्या है? शराब, नशा, व्यभिचार? आप कहेंगे मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपके विचारों के बारे में क्या है? आपकी बोली के बारे में क्या है? क्या आप व्यर्थ की बातें करते हैं? क्या आप सच बोलते हैं? आपकी समस्या जो भी हो, आप परमेश्वर को क्यों नहीं बताते और पवित्र आत्मा के हाथों में क्यों नहीं दे देते? मेरे मित्रों, यदि आप सच में इनके साथ व्यवहार करें तो आपको मानसिक चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आपकी सहायता नहीं कर सकता है। वह आपके दोषी विवेक को किसी और क्षेत्र में मोड़ देता है, परंतु आपको उससे मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल मसीह ही है जो उसका निवारण कर सकता है। यह उसका काम है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वह आपको विश्राम देना चाहता है। वह आपको शांति और आनंद देना चाहता है। वह आपके पाप के बंधनों से छुटकारा देना चाहता है, जिससे कि आप जाने कि वह पापों को क्षमा कर सकता है और आप इस बात को समझ सके कि पापों की क्षमा क्या है। क्या आज आपने इसका अनुभव किया है? मेरे मित्रों, आज बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पर विचार करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपकी सहायता करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप अवश्य ही थोड़ा समय जरूर लेंगे और प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु के निकटता में समर्पित करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया। छू गया है। का प्यार मिला है।